Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक एसपी शर्मा जी. शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है राजेश.
डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस एंड विद गेन्स, सेंसेक्स सर्जेस ओवर 800 पॉइंट्स, निफ्टी क्लोजेस एट 24,708. President Draupadi Murmu says agriculture is the key to India's goal of becoming a developed nation by 2047. Russian President Vladimir Putin lauds Prime Minister Narendra Modi-led government initiatives for small and medium enterprises. And global crude prices edge up. Brent crude trades at $72.42 per barrel.
घरेलू शेयर बाजार लाभ के साथ बंद हुए. सेंसेक्स में 800 अंक से अधिक का उछाल और निफ्टी 24,708 पर बंद हुआ. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत के वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के विस्तार की सराहना की और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $72.42 प्रति बैरल. शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के शेयर बाजार की खबर पर नजर डालते हैं. प्रौद्योगिकी संबंधित शेयरों में तेजी और विदेशी संस्थागत निवेशकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण घरेलू शेयर बाजार आज तेजी के साथ बंद हुए. 30 शेयरों वाला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक 809 अंक यानी 1% के उछाल के साथ 81,766 अंक पर पहुंचकर बंद हुआ. दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी कारोबार के अंत में 241 अंक ऊपर चढ़कर यानी कि 0.98% की बढ़त के साथ 24,708 पर पहुंच गया. बंबई स्टॉक एक्सचेंज का विस्तृत बाजार भी हरे निशान के साथ बंद हुआ. मिड कैप सूचकांक में 0.27% और स्मॉल कैप सूचकांक में करीब 0.16% की वृद्धि दर्ज की गई. सेंसेक्स सूचकांक में 30 में से 27 कंपनियों में बढ़त दर्ज हुई. बीएससी के सेक्टोरल सूचकांकों में से 20 में से 18 सेक्टर लाभ के साथ बंद हुए. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 109 कंपनियों ने अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ जबकि 8 ने 52 सप्ताह के निचले स्तर को भी छुआ.
Domestic benchmark equity indices today ended with gains, supported by rally in technology stocks and positive turnaround by the foreign institutional investors. The 30-share BSE Sensex surged 809 points, or 1%, to close at 81,766, and the NSE Nifty 50 gained 241 points, or 0.98%, to settle at 24,708. The broader market at the Bombay Stock Exchange also ended in positive territory. The mid-cap index added 0.27% and the small-cap index rose 0.16%. In the Sensex index, 27 out of the 30 companies logged gains. Among the top gainers, TCS and Infosys both surged over 2.3%. Titan climbed more than 2.2% and Bharti Airtel advanced over 1.9%. Conversely, in the top laggards, NTPC shed over 0.9%, Asian Paints fell 0.3%, and IndusInd Bank dropped 0.1%. In sectoral indices at the BSE, 18 out of 20 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, focused IT surged nearly 2%, tech gained over 1.9%, and information technology added over 1.8%. Conversely, in the top laggards, realty fell 0.3% and services was marginally down by 0.03%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,130 companies advanced and 1,841 declined, while 112 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 109 companies hit their 52-week high, while 8 hit their 52-week low.
अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली बढ़त के साथ 84 रुपये और 73 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 106.21% पर कारोबार कर रहा था। एसपी कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जी शुक्रिया
एसपी। आज शेयर बाजार को देखें तो उठा पटक का माहौल हमें देखने को मिला। सुबह जब ओपनिंग हुई तो थोड़ा सा ग्रीन थोड़ा सा रेड इस तरह से चल रहा था, लेकिन अचानक से 1000 अंकों तक का उछाल हमें देखने को मिला और जब बंद हुआ तो इतनी ज्यादा बढ़त देखी 809 अंकों की।
जी मार्केट्स काफी वॉलेटाइल रही हैं, शुरुआती दौर से ही मार्केट्स काफी वॉलेटाइल थी। पहले बात बढ़त दिखाई, उसके बाद करेक्शन दिखाई, फिर वापस, तो ऐसे करके पूरा जो डायनामिक एक एनवायरमेंट था मार्केट में जो देखा गया, खास करके जो इस तरीके से मार्केट में एक उछाल था कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हैं कल के लिए। कल आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है,
बिल्कुल,
मार्केट शायद ये एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद कुछ लिक्विडिटी के लिए आरबीआई कुछ मेजर्स लेगा, क्योंकि हमारी ग्रोथ में काफी स्लो डाउन आ चुकी है, जो कि एक मैं समझता हूँ कि अनएक्सपेक्टेड एक स्लो डाउन है। इतनी ज्यादा नहीं सोचा था, किसी ने एस्टिमेट नहीं किया था कि जीडीपी इस स्तर पर डेसिलरेट करेगा। उसके कुछ कारण हैं, क्योंकि जो भी ग्लोबल मंदी कही है या कुछ डोमेस्टिक फ्रंट पे जो भी स्लो डाउन देखा गया हल्का सा, लेकिन जो ओवरऑल अनुमान है हमारा 7% का, वो हम अगले जो 2 क्वार्टर हमारे पास हैं उनमें अचीव करेंगे। तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी जो ग्रोथ है दैट विल बी मोर देन 7% फॉर द करंट ईयर ऑल्सो, हमारे जो एस्टिमेट्स हमें बताते हैं। लेकिन अभी इस जंक्चर पे मार्केट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो मार्केट देख रही है कि एक तो लिक्विडिटी और दूसरा जो जीडीपी में ये थोड़ा स्लो डाउन देखा गया, तो इसके मुकाबले में आरबीआई कुछ जरूर ऐसे मेजर्स लेगा कि इकोनॉमी को सपोर्ट करने की बात हो, जो ग्रोथ ओरिएंटेड मेजर्स जिनको हम कहते हैं। और तीसरा जो यूएस में जिस तरीके का एक हम देख रहे हैं मार्केट्स में एक बहुत ही गंगहो है, मार्केट्स बहुत काफ़ी एक्सपेक्टेशंस में है, और अभी जो 17 तारीख को जो भी पॉलिसी आने वाली है फेड रेट पॉलिसी आएगी, उसमें भी एक्सपेक्टेशन है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट का जो कट है वापस देखने को मिलेगा। तो यूएस की जो मार्केट है काफ़ी इस समय पे स्ट्रांग है, ऑल टाइम हाई पे है, क्योंकि ये मार्केट्स में जब एक जगह पे बहुत तेजी आती है तो ओवरऑल पूरे विश्व के बाजारों में ही वैसा माहौल देखने को मिलता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से, और फिर दूसरा जो हमने वॉलीटैलिटी देखी, खास करके जब हमने हाई पे एक वॉलीटैलिटी देखी, उसका कारण था कि लोगों ने फिर प्रॉफिट भी बुक किया, क्योंकि काफी समय के बाद 2 महीने के उच्च स्तर पर भाई मार्केट जो है ऑपरेट कर रहे हैं, तो काफी लोगों ने जो शायद इस उम्मीद में थे कि हम मार्केट्स में थोड़ी रैली आए तो वो अपना कुछ प्रॉफिट बुक करें, तो वो भी प्रॉफिट बुकिंग भी एक कुछ लास्ट के जो 1 घंटा तो उसमें देखी गई, दो मार्केट्स रिकवर्ड वंस अगेन।
डॉक्टर शर्मा, द मार्केट हैज सर्ज बियॉन्ड 3000 पॉइंट्स ओवर 5 डेज एंड लॉट ऑफ इट इज बीइंग नाउ अट्रिब्यूटेड टू पॉजिटिव टर्न अराउंड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इन फैक्ट इन द मंथ ऑफ डिसम्बर दे हैव अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्टेड 13,900 crores सो फार। So, what is this turnaround all about? What is interesting them in the Indian markets?
I think they are in the value buying, because markets were decelerating significantly from its peak of more than 85,000 to the level of 81,000-82,000. So that's why now they are finding the value buying in many sectors, like the IT sector is becoming more lucrative for them, because IT sector decelerated significantly by 10 to 15%. So that's why that value buying is attracting them once again towards India, and particularly in such kind of sectors like the IT sector and the FMCG and infrastructure particularly. So because as I mentioned many times that India is a long-term growth story. You can't deny India's growth story on the basis of some fluctuation here and there in the other markets. But India's market will remain on a sustained level because our economy is strong. We have great expectations going forward. We are now moving towards a $7 trillion by 2030 and third largest economy probably by 2027.
But how do you see the GDP figures? They tell a different story.
Still, we are the fastest moving economy because this is the temporary fluctuation because of some deepening of the geopolitical developments and some slowdown because of the high inflation numbers during the last many quarters. So that's why some impact is there, but that is temporary. That is not, I think, will come again in the coming quarters. Coming quarters will be very, very positive and strong as compared with the previous two quarters. So overall growth, as I mentioned, will be at around 7% or maybe more than 7% also. Expectations are that growth will be at around 7.2%. This is only because of the great efforts of the policymakers and the efforts of the trade and industry.
You mentioned about Jeremy Powell's statement, which came on Wednesday, that the U.S. economy is in remarkably good shape. So is that reflecting the Indian market reflecting the positivity, the positive global market sentiments now?
Yes, because when the U.S. economy grows, then the whole world also grows in a momentum because U.S. is the largest economy with the size of 29 trillion. So that's why if some growth, 2-3% growth is coming in the U.S. economy, that is a great thing for the whole world GDP. And for the whole demand trajectory also. So the impact, the trickle-down impact is also very, very significant at this juncture. So I would say that this is a positive sign that U.S. economy is recovering significantly. Inflation is also stable, though increased by 0.2 percentage point, but still within the range. And third is the high expectations of the rate cut by the Fed in the coming policy review of 17th
so,
December.
Dr. Sharma, we talked about GDP numbers a while back. So in India, the market confidence stems from expectations that the economic deceleration that has happened in FY25 initial two quarters may have reached its lowest point.
Now the worst is behind, actually. Now we are moving ahead.
Yes.
And the next two quarters will be very, very promising and growth-oriented because we have a lot of reforms and support from the policy environment.
I just wanted to add one thing, Dr. Sharma, regarding the government-driven capital expenditure. Because that is something that people are looking forward to. Perhaps the first two quarters is taken care of with the government-driven capital expenditure. Acceleration will come forth now.
Yes, yes. Because in the first two quarters, the government expenditure was not that much intact because of the election months and the after-election developments. So that's why... and the budget also came in the month of July. So this was happening in the first two quarters. So going forward, two quarters are expected to be doing great as compared with the previous ones.
रस्पित, दो महीने के बाद FIIs की हम वापसी देख रहे हैं, लगातार पैसे आ रहे हैं भारतीय मार्केट में, और ये भी हमने देखा कि जो रिजल्ट्स आए इलेक्शन के बीते दौर में उनका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने देखा मार्केट में. अभी कल मॉनेटरी पॉलिसी रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद फिर हमारे यहाँ तो मार्केट बंद हो जाएगा दो दिन. लेकिन अभी DIIs को किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए मार्केट को लेकर के?
देखिए, अप्रोच बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि जैसे मैंने लास्ट अपने ब्रॉडकास्ट में ही बताया था कि अगर आने वाले टाइम में जियोपॉलिटिक्स संभल जाती है, थोड़ी सी
जिसके
विराम आ जाता है, जो हमने देखा है कि थोड़ा उसमें विराम आया है, तो मार्केट्स वापस अपने जो ऑल टाइम हाई स्तर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगे. दैट इज ऑल्सो अगेन कमिंग इन पिक्चर. अभी हम देख रहे हैं कि निफ्टी 25,000 के आसपास पहुंच रहा है. हमारा जो सेंसेक्स है वो भी जो ऑल टाइम हाई था 85,000 के आसपास की तरफ अभी उसने अपना रुझान जाने की शुरुआत कर दी है. जिस तरीके से हमने पिछले कुछ 5 सेशंस में देखा कि मार्केट्स एक बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ वापस रिबाउंड कर रही हैं
जी.
तो आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि मार्केट्स एक नया स्तर भी छू सकती हैं. अगर कुछ पॉजिटिव साइंस आरबीआई की तरफ से आ जाते हैं कि कुछ लिक्विडिटी एनहेंसमेंट मेजर्स आ जाते हैं, हो सकता है सरप्राइज 25 बेसिस कट का भी वी कांट बी रूल आउट दैट सरप्राइज आल्सो, बट द लिक्विडिटी एक्सपेक्टेशंस आर ऑन हाई.
लेकिन आरबीआई ये भी तो ध्यान में रखिएगा कि बजट को आने में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा, उसको भी ध्यान में रखना होगा.
जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी. फर्स्टली ग्रोथ भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ग्रोथ जो थोड़ा इम्पैक्ट आया है उसके लिए हमें लिक्विडिटी की खास तौर पर जरूरत है. और अगर ये जो ग्लोबल लेवल पे हम देखते हैं कि जो जियोपॉलिटिक्स है वो ऑलरेडी थोड़ा थमी है, और ऊपर से यूएस में बहुत ही पॉजिटिव साइंस हैं, और अगर हमें लिक्विडिटी सपोर्ट मिल जाती है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स के लिए एक ऑल टाइम हाई जो स्तर है वापस उसके आगे निकलना कोई बड़ी बात नहीं होगी.
सो डॉक्टर शर्मा, डू यू थिंक दैट वी वर टॉकिंग अबाउट Q2 GDP फिगर्स अ व्हाइल बैक, दिस माइट इन्फ्लुएंस आरबीआई टू एडजस्ट द CRR if not the repo rate?
Yes, that may also happen because the liquidity comes from the easing of CRR also. So that can be a great measure to support and to create the positive momentum in the economy. That will be a great indication to reduce the repo rate in the coming times.
Okay. Moving on, President Draupadi Murmu today said agriculture is key to India's goal of becoming a developed nation by 2047. She highlighted India's potential to further boost agricultural production due to its favorable climate, skilled workforce, fertile land, and advanced technologies. President Murmu was speaking at the 40th convocation ceremony of Odisha University of Agriculture and Technology in Bhubaneswar today. The president called upon agricultural scientists to develop new strategies to protect farmers from challenges like natural disasters, climate change, and misuse of resources. She emphasized using the latest technologies such as drones, remote sensing, artificial intelligence, and nanotech to support agriculture. She stressed the need to focus on soil health, environmental conservation, and resource management. It's good that the country is going to focus on agriculture with high-tech technology.
Because agriculture is our way of life or backbone of the economy. Because without agriculture, demand is not created. So demand happens if the agriculture sector grows. And Odisha is already progressing significantly. And many top macroeconomic variables are very much at the top in the state in Odisha.
और आगे बढ़ते हैं. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में छोटे और मध्यम उद्यमों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सराहना की है. मॉस्को में कल एक निवेश मंच को संबोधित करते हुए श्री पुतिन ने रूस के आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम के साथ इसकी समानता बताते हुए भारत की आर्थिक पहल, विशेष रूप से मेक इन इंडिया पहल को महत्व दिया. राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत के नेतृत्व ने अपने हितों को प्राथमिकता देने की नीति पर ध्यान केंद्रित किया है और भारत में विनिर्माण संचालन स्थापित करने के लिए रूस की तत्परता व्यक्त की. श्री पुतिन ने छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया. उन्होंने सदस्य देशों से अगले साल ब्राजील में आगामी शिखर सम्मेलन के दौरान के लिए प्रमुख क्षेत्रों का आकलन करने का आग्रह किया. एसपी, इस खबर पर आपके विचार क्या हैं?
देखिए, बहुत ही पॉजिटिव साइंस है. जिस तरीके से उन्होंने एमएसएमईज के ऊपर बताया कि भारत का खास फोकस है, तो मैं बताना चाहूंगा कि भारत में विश्व के मुकाबले सबसे ज्यादा एमएसएमईज हैं.
जी,
इंडिया में जो 63 मिलियन एमएसएमईज हैं वो विश्व में सबसे ज्यादा है. किसी और देश में इतने एमएसएमईज नहीं है. इवन के चाइना में भी जो एमएसएमईज हैं वो लगभग कोई 50 और 60 मिलियन के बीच में है इंडिया में. और यूएस में लगभग कोई 45 और 50 मिलियन के बीच में एमएसएमईज हैं. तो इंडिया होल्ड्स द लार्जेस्ट चंक ऑफ द एमएसएमईज, एंड एमएसएमईज आर गोइंग टू बिकम अ ग्रेट ग्रोथ इंजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है एमएसएमईज की, क्योंकि 6 करोड़ से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की है. और आने वाले टाइम में जिस तरीके से सरकार ने रिफॉर्म्स की हैं पिछले कुछ वर्षों में, तो एमएसएमईज के लिए आने वाला जो वक्त है, जो अगले हम 6-7 साल जब हम 2030 तक $7 trillion की इकोनॉमी बनेंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो मेजर पॉलिसी एनवायरनमेंट है वो खास करके MSMEs की तरफ ही टिल्टेड है।
ओके, एंड आल्सो वेरी हार्टनिंग टू नोट वाज प्रेसिडेंट पुतिन्स रेडीनेस टू एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इन इंडिया। दैट्स व्हाट ही इज लुकिंग फॉरवर्ड,
बिकॉज नाउ इंडिया इज प्रोवाइडिंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वी आर नॉट ओनली क्रिएटिंग द डिमांड ट्रैजेक्टरी, बट वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द टैलेंट पूल टू द मेनी इकोनॉमीज, मेनी कंट्रीज, बिकॉज वी हैव अ ग्रेट टैलेंट इन अवर कंट्री।
External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today said that India does not want to simply be a consumer market for other economies. Addressing the Bharat at 100th Summit in New Delhi on the theme of fueling Bharat's global rise, Dr. Jayashankar said that global conglomerates and industries are coming to India not just for its market but also its talent. On China, the minister said that India wants a healthy trade relationship but does not want to be dependent upon it. Talking about imports from Russia, the minister said that the European nation is a trusted partner along with Australia, Brazil and Indonesia for natural resources that India lacks. He highlighted that with Russia's trade attention shifting away from West in the past few years, India has been pressing Russian leadership to improve their trade in pharma, marine and agriculture. So Bharat at 100th Summit also echoed what you are talking about, India's great potential.
Right, because India provides not only the consumption or demand, India has a lot of other strengths also. And the countries like Russia or the other countries like China, we have great opportunity to provide them, because as I mentioned that our technological development, recently we observed that NRI, Network Readiness Index, is there. So we are among the top 50. Our network, our technological advancement, our AI advancement is becoming now robust in the world. So countries are looking
so
at India.
So is the ease of doing business.
Yes, yes.
Okay. Moving on, the government today said that the cost of data has reduced drastically from 269 rupees per GB in March 2014 to 8 rupees 31 paise per GB in June 2024. In a written reply in Rajya Sabha, Minister of State for Communications, P.C. Shekhar, said government has brought various reforms in telecom sector in the last 10 years and this has led to a lot of transformation. The MOS informed that internet users have increased from 25.15 crores in March 2014 to 96.9 crores in June this year. He said India saw the fastest rollout of 5G services in the world with 4.6 lakh base transceiver stations, BTS, deployed across the country. Again, a very heartening news.
Yes.
Dr. Sharma,
yeah.
Look at the base that has gone up to 96.9 crore internet users.
Yes, and in the mobile manufacturing also, we are progressing year after year. And last year, the production units were 33 crores, so that is a great thing which is happening with the support of the manufacturing processes and the advanced technology adopted by our manufacturers.
आगे बढ़ते हैं। एशिया के शेयर बाजारों में आज अधिकतर मिलाजुला रुख देखा गया। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स आधे प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ बंद हुआ। जापान के निक्केई सूचकांक ने 0.3% की बढ़त दर्ज की। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.12% ऊपर चढ़ गया। वहीं हांगकांग की हैंगसेंग सूचकांक और दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.9% की गिरावट दर्ज की गई। यूरोप के तीनों प्रमुख बाजार आज मिलाजुला कारोबार कर रहे थे। समाचार लिखे जाने तक जर्मनी का डेक्स 0.4% की बढ़त में था। फ्रांस का कैक 0.3% के लाभ के साथ कारोबार कर रहा था, जबकि लंदन का फुटसी 100 लगभग स्थिर था।
US stocks ended higher yesterday with all three major indices registering record closing highs, led by rally in technology shares and comment of the Federal Reserve Chairman Jeremy Powell about the resilience of the US economy. Powell said that the recent performance of the country's economy was stronger than it appeared in September when the central bank began reducing interest rates. The Nasdaq composite surged 1.3% and the S&P 500 rose 0.61%. The Dow Jones Industrial Average increased 0.69%, crossing the 45,000 mark for the first time ever, even as the Federal Reserve Chair sounded cautious on future interest rate cuts. So what are your expectations? Will he or will
he not?
Yes,
I am expecting 25 basis point cut on 17th December. So that's why the markets are...
Everything seems to be right.
Yes, yes. Because now inflation is also stable in the U.S. economy, and they are looking at the growth momentum to move forward and to become more robust in the coming times.
So what are your expectations from the
RBI
new administration, which takes office on January 2025?
We have great expectations because Trump is a great friend of India. So that's why everything will be favorable in the coming times.
आगे बढ़ते हैं. सरकार ने आज अपनी तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में दो स्टार्टअप को मंजूरी दे दी है. तकनीकी वस्त्रों में महत्वाकांक्षी नौ प्रवर्तकों के लिए अनुसंधान और उद्यमिता के लिए अनुदान ग्रेट योजना के तहत लगभग 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा. स्वीकृत स्टार्टअप परियोजनाएं सतत वस्त्रों और चिकित्सा वस्त्रों के प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों पर केंद्रित हैं.
Oil prices edged up today as market participants awaited the outcome of the OPEC Plus meeting. Brent crude was trading 0.15% up at $72.42 per barrel, and WTI crude was marginally up by 0.07% to trade at $68.59 per barrel. So what are your expectations of the OPEC Plus meeting? Will they cut production?
I don't see that they are going to cut the production because now... once again, the expectations are high about the demand trajectory because U.S. economy is recovering and world economic growth will be higher than the anticipated. So production cut is not right at this juncture to make a great balance in the economic environment.
Okay. And this the figures of $72.42 per barrel for India, it is good.
Yes, because still surely at a rational
like
level,
be less, but
surely at the rational level right now, but going forward, that crude must be stable, June, because the inflation is already impacting many economies.
और सर्राफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.13% गिरकर 77,080 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 0.18% गिरकर 93,030 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक दिसंबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.16% बढ़कर 76,168 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. वहीं दिसंबर में की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.43% बढ़कर 91,088 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा था. एसपी गोल्ड के बारे में आपके क्या विचार हैं? लोगों को क्या अप्रोच रखनी चाहिए?
देखिए, गोल्ड के बारे में मेरे विचार हमेशा बहुत पॉजिटिव रहे हैं और जब भी कोई करेक्शन आती है,
यूज्ड टू से 1 लाख तक जाएगा.
जी 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 जी. और वो भी उस टाइम पे जब गोल्ड 50,000 से भी कम था. तो अभी मैं बताना चाहता हूँ कि वॉलेटाइल बहुत रहते हैं लोगों को. कई बार इसमें करेक्शन भी अब तेज आती है कि प्राइसेस काफ़ी हाई पे जाने के बाद. तो जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो उनको उसमें घबराने की बात नहीं होती है. गोल्ड प्राइसेस विल रिमेन इंटैक्ट. गोल्ड विल शाइन लाइक द मार्केट शाइन्स.
मतलब दाम के नीचे आने की कोई गुंजाइश आपको नजर नहीं आती?
करेक्शंस होते रहेंगे. मान लीजिए अभी जैसे हमने देखा कि 80,000 के आसपास, 81,000 के पास टच करके वापस हमने 75,000 का लेवल भी देखा. तो वॉलीटिलिटी कांट बी रूल्ड आउट, वो रहेगी, लेकिन प्राइसेस एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इंटैक्ट.
बट हाउ ऑप्टिमिस्टिक आर यू अबाउट 1 लाख?
Yes, I am greatly optimistic, 100%.
Okay, and very, very briefly, what are your expectations of the market in the coming days?
Markets will remain strong, though corrections can't be ruled out, volatility can't be ruled out, but the overall market momentum will be very, very strong in the coming months and quarters.
ओके एसपी शर्मा जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका हृदय से हम आभार प्रकट करते हैं.
जी शुक्रिया. थैंक यू
SP for being with us. And before we close the headlines once again, domestic benchmark indices end with gains. Sensex surges over 800 points. Nifty closes at 24,708. President Draupadi Murmu says agriculture is a key to India's goal of becoming a developed nation by 2047. Russian President, Lords Prime Minister Narendra Modi led government initiatives for small and medium enterprises, and global crude prices edge up. Brent crude trades at $72.42 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
Namaskar. Market Mantra.